نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير محسن انسانيت اس میں سے ہم آج پڑھیں گے دلیل کی قوت پیج 489 ہے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور پڑھ رہے ہیں کہ جس میں لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف آنے لگے اور اجالا پھیلتا ہی گیا حقیقت یہ کہ انسان جب لگا رہے اپنے کام پہ تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کی خوبصورتی اور اس کی سچائی دکھاتا ہے کیونکہ دین سچا ہے اور اس دین کو جس نے بھی تھام لیا اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے نہیں ڈالتا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمان اس دور کی ایک سپر پاور بن گئے اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ آج کے دور میں بھی ہم مسلمانوں کو ایسا بنا دے کہ جو حقیقت میں ان کو اٹھا کر نکلے اور اس اسلام کی خوبصورتی سے لوگوں کو مائل کرے انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے دلیل کی قوت کیا دلیل کی بھی کوئی قوت ہوتی ہے جی بالکل ہوتی ہے یاد رکھیے کہ دلیل بہت بڑی قوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سورۃ توبہ میں بھی 10ویں پارے کے بالکل پہلے رکوع میں کہی کہ جو جیے وہ دلیل کے ساتھ جیے اور جو مرے تو وہ دلیل کے ساتھ مرے اور یہ دلائل اگر آج ہمارے پاس ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا جینا مرنا اس چیز کے مطابق نہیں ہے تو اس کا اندر کہ کمی ہمارے اندر ہے اسلام ہمیشہ سے ہی اپنی حقیقت اور اپنی سچائی لوگوں سے منواتا ہے اور اللہ کرے کہ آج ہم مسلمان بھی اس کو لے کر چلیں تو یہ پڑھتے ہیں اور یہ بھی دین میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کتنے سٹرونگ تھے نا دلیل کی قوت تحریک اسلامی کی سب سے بڑی قوت دلیل کی قوت تھی پیری مریدی کا کوئی نظام ہوتا تو مخاطبوں کی عقلوں کو شن کرتا یعنی ایک خاص وقت تک انسان کچھ کام کر سکتا ہے بغیر سوچے سمجھے اور جو لوگ سامنے ہوتے ہیں نا اگر وہ پیری مریدی میں ہے نا تو وہ عقل نہیں استعمال کرتے یہ بڑا اہم جملہ ہے اس کو نوٹ کریں جہاں یہ سلسلے ہوتے ہیں نا وہاں ساتھی بس شخصیت پرستی کی وجہ سے بھاگتے ہیں لیکن جہاں سچا دین ہوتا ہے وہاں ہر دن سننے کو ایسی بات مل جاتی ہے کہ جس سے بندہ پوری دلیل کے ساتھ اس کام پہ جمع رہتا ہے اپنے اوپر لے کر سوچیں یہ جو کام سب کچھ کر کرا رہی ہوں پڑھ پڑھا رہی ہوں کوئی بھی چیز ہے کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم کسی انسان سے پیار کرتے ہیں اور کیا ہم کسی نام سے پیار کرتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ دیکھیے کہ قرآن جیسے دلوں کو مسخر کرتا ہے اور میں اسٹوڈنٹس کو دیکھتی ہوں اور جب لوگ ملتے ہیں اور جن کے چہرے کے تاثرات اور فیلنگس یہی ہوتی ہیں کہ ہماری زندگیاں بدل گئیں تو کسی انسان سے پیار کر کے تو نہیں بدلتی زندگیاں اس میں تو انسان اور بھی بعض دفعہ بے عمل ہو جاتا ہے تو لہٰذا یاد رکھیے کہ دلیل کے ساتھ جیے آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ایک دلیل کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھیں گے تو ایک دلیل کے ساتھ اٹھیں گے روایتی مذہبیت کا کوئی پیغام ہوتا تو اہم پسندی کے رجحانات کی آبیاری کرتا مشکل لیکن خوبصورت جملہ روایتی مذہبیت کیا ہوتی ہے ٹریڈیشنل مسلمز جو آج کل ہم چل رہے ہیں جو موقع آیا اس کا ایک سیلیبریشن کر لیا ہر مہینے کے ساتھ کوئی ایک نیکی جوڑ دی اور نمازیں 5 وقت اس لیے پڑھنی ہے کہ اس کے بغیر مسلم نہیں رہیں گے اور اس کے بعد ہوتا کیا اوہام پسندی وہم سے ہے یعنی جو کوئی مذہب کا روایتی پیروکار ہوگا نا یاد رکھیے وہاں وہم بہت ہوں گے یہ ہو گیا تو یہ ہوگا بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ ہو جائے گا اور الو بولا تو یہ ہوگا آٹا ہاتھ سے گر گیا پیڑا گر گیا تو یہ ہوگا اور دس اینڈ دیٹ کیوں اس وجہ سے کہ لوگ اپنے آپ کو روایات کا غلام بنائے ہوتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کے اندر اصل دین نہیں پھیلتا صرف وہم پھیلتے ہیں اور آبیاری کرنا کہتے ہیں پانی دینے کو مراد یہ ہے کہ جہاں لوگ روایتی طور پہ مسلمان ہوتے ہیں وہاں وہم ہی رہتے ہیں رحمانی تصور کا کوئی سلسلہ ہوتا تو چشم بند و گوش و بند و لب بے بند کا افسوں پڑتا یعنی آنکھیں بند رکھو کان بند رکھو لب بند رکھو نہ دیکھو نہ سنو ना बोलो, यह है रहबानियत, बस चुप। मुराद ये है कि राहिब जो होते हैं वो बस तर्क दुनिया को ही सब कुछ कर लेते हैं, मगर वहाँ तो ऐसी जी शऊ रूहों की मांग थी जो खुदा परस्ती की, यानी जो अल्लाह को बड़ा बनाने की और जो अल्लाह के बंदे बनने की बुनियादों पर पूरा एक निज़ाम तमद्दुन उठा सकें और हुस्न खूबी से चला सकें। यह है इस्लाम, इसको ज़रा सा शऊर से देखें। इस्लाम क्या है? नबी सल्लम के इर्द गिर्द का माहौल कैसा था कि वहाँ पे लोगों को अपनी रूहों की खुराक मिल रही थी? एक ऐसा निज़ाम था जिसकी बुनियाद क्या थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर उसको उठाए नहीं बल्कि हुस्न खूबी से चला सके। और ये था वो बुनियाद में ख्याल और नज़रिया जिस पे सहाबा ने और बाद के मुसलमानों ने 1000 साल से भी ज़ायद दुनिया को वाकई ऐसा तमद्दुन दिया कि लोग मजबूर हो गए। इसलिए इस तहरीक इस्लामी ने अपनी दावत पेश की तो सोती हुई अक्लों को झुकाया, दिमागों को झंझोड़ कर बेदार किया, आंखें खोल कर देखने और कान खोल कर सुनने की तलकीन की, निज़ाम कायनात में तदब्बुर करने की रग़बत दिलाई, अनफुस यानी अपने आप में और आफाक यानी कायनात के हल का तज़िया करने का सबक दिया, नित नए सवाल छेड़ छेड़ कर फ़िक्रों में तहरीक पैदा की, ज़हनी तकलीद के बंधनों को तोड़ा, फजूल रिवायात और रसूम के जाल पारा पारा किए, आबा परस्ती और माजी परस्ती के सहर को बातिल किया। ये दो चीज़ें होती हैं, याद रखें। लोग या तो बड़ों की पूजा शुरू हो जाते हैं या माजी में ये था, माजी में वो था। अल्लाह के नबी के दौर में जो सबसे बड़ा बुत था ना मक्का वालों का, वो हिबल या हुबल नहीं था और वो लात और उज़ा भी नहीं थी, वो आबा परस्ती का था। आज हम मुसलमान भी काफ़ी माजी परस्त हो गए, और आप देखिए कि कैसे जहनी तकलीद के बंधन को आपने तोड़ा। बेटियों को जिंदा दरगोर कराते थे, ये जहनी तकलीद से होता है। अक्ल सोचने का काम ही छोड़ देती है सिर्फ इस नाम पे कि जो सब कर रहे थे तुम भी करो। फिर इसी तरह से आप देखिए रस्म व रिवाज के इतने जाल थे, अल्लाह के नबी ने एक एक करके ख़त्म की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? उन्होंने कलानाम किस्म की मखलूक के अंदर सोचने समझने वाला इंसान बरामद करने की तदबीर की। कल अनाम जानवरों जैसे, ईट ड्रिंक बी मैरी, जानवर में और इंसान में एक बड़ा फ़र्क है जी। जानवर सोचता नहीं है, अकल नहीं रखता, इंसान रखता है। तो जब इंसान अपनी ज़िंदगी सिर्फ इस तरह से बना ले कि जिसके बाद सिर्फ वो ज़िंदगी का मकसद सर्वाइवल पे रहे, यानी लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ सर्वाइवल गाइड फॉर हिम, तो ऐसे लोग जो हैं हकीकत में फिर वो ज़िंदगी बसर करते हैं कि जिसमें इंसान को शर्म आनी चाहिए। सुबह उठे खाने की फ़िक्र, रात को सोए अगले दिन की फ़िक्र, और सारा वक़्त 3 से 13 और 13 से 23 के चक्कर में, ये देना लेना, ये खाना, ये कहाँ से आएगा, ये दुनिया के ख़र्चे। हैरत होती है मुसलमान को जब उसकी सोचे सिर्फ 4 दिन की दुनिया के ख़र्चों और पानियों में गुजर जाए। फिर हम कहते हैं हम आसूदा ही नहीं हैं, फिक्रें बड़ी हैं। कभी आप अपने असलाफ से ज़रा सा ताल्लुक़ तो जोड़ के देखें, फिर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या लोग थे और अल्लाह ने उनसे क्या काम ले लिए। और वो कौन थे जिन्होंने सुम्मम बुकमन उम्यून किस्म के अफराद को ठोंके लगा लगा कर बेशौरी की पेंक से निकाला? यानी अल्लाह के नबी का एक काम था कि आपने लोगों को बोलना, सोचना और समझना सिखाया। आज भी बहुत सारे लोग सुम्मम बुकमन उम्यून है, किस मामले में? हक के मामले में। सच, जिंदगी क्या होना चाहिए कुछ नहीं पता, जो सब कह रहे वही कर लो, जो ये हो गया वो हो गया, दिस एंड दैट नहीं। याद रखिए कि जब तक आप अपने अंदर को बेदार नहीं करेंगे, सोई हुई सलाहियतों को नहीं जगाएंगे, आप तब्दीली पैदा नहीं कर सकते। उसने दिमागों से जंग दूर किया, सच है। कितना जंग आलूद हो जाता है ना वो बर्तन या वो मशीन जिसको थोड़ा सा इस्तेमाल करें और फिर छोड़ दें। देखिए इसको समझिएगा, नई मशीन ला कर रख दें, 10 साल भी पड़ी रहेगी, निकालेंगे तो नहीं ही लगेगी। लेकिन अगर कोई मशीन कुछ दिन इस्तेमाल करके और ख़ास तौर पे फिर आप उसको साफ़ किए बगैर छोड़ दें तो क्या होता है? वही होता है, लोहे की चीज़ को जंग लगता है ना। इंसान अपनी अक़ल को इस्तेमाल करे और फिर छोड़ दे, ये बहुत बुरे अंजाम की पेशखबरी होती है। हमेशा अपने आप को इस्तेमाल करें, अपनी अक़ल इस्तेमाल करें, अल्लाह से मांगें, सोच को बेदार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वलअफाफ वलग़ना। दुआएं मांग मांग कर इस सफ़र में आगे बढ़ें कि अल्लाह मुझसे बेहतरीन काम ले, मुझे बेहतरीन फ़ैसले करने वाला बना। वरना याद रखें, अगर आप लकीर के फ़कीर हैं ना, तो जंग लगेगा आपके दिमागों में। अलगरज़ इसने जाहिलियत के मुसल्लत करदा अक्ली जमूद को तोड़ दिया। इस तरह जो जो रूहें जागती गईं और जिन लोगों की अक्लें अंगड़ाइयाँ लेकर उठने लगीं, इनके सामने ज़िंदगी की सच्चाइयाँ रखीं और अपने इस्तदलाल के ज़ोर से यके व दीगरे इनको मुतासिर करके छोड़ दिया। यानी ये सारी बातों को जमा कर दूँ ना, तो अल्लाह के नबी वाकई रसूल इनकलाब थे। इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर यही लिख ले, इनकलाब बरपा करने वाले ऐसे ही होते हैं। और अल्लाह हमें ऐसा बना दे, शर को खैर में बदलें, ये भी इनकलाब है। सोई हुई उम्मत को जगा दें, ये भी इनकलाब है। और बेअमली को अमल में ढाल लें, ये भी इनकलाब है। और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। तहरीक इस्लामी ने अल्लाह वाहिद को खालिक मालिक राजिक हाकिम और हादी की हैसियत से पेश किया, तो इस जोरे इस्तदलाल से पेश किया कि जवाबी ओहाम के असलहा कुंद होकर रह गए। जी, ये भी बड़ा अहम जुमला। याद रखिए कि जब आप लोगों के सामने अल्लाह की बड़ाई पेश कर देते हैं ना, तो उसके बाद उसके तोड़ में कोई असलहा नहीं चलता। यानी ये इतनी बड़ी दलील है, ला इलाहा इल्लल्लाह। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? दलील की कुव्वत। तो उस एंगल से भी एक एक जुमले को परखिए। दलील की कुव्वत बड़ी है ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी दलील कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानो। जब इस मुआशरे में आप अल्लाह को एक मान के उठेंगे ना, तो याद रखिएगा इसके आगे कोई बोल नहीं सकेगा। लोगों के दिल दिमाग में अल्लाह की बड़ाई बिठाई आपने। इसने इंसानी कुव्वत मुशाहिदा को उकसा कर दावत दी कि ज़मीनों आसमान की नेरंगियों पर निगाह डालो। यानी ये जो अल्लाह ने चारों तरफ खूबसूरत रंग बखेरे में, इस पे गौर करो। चांद तारों की गर्दिश पे गौर करो। मौसमों के चरखे का घुमाव देखो। हवाओं और बारिशों के निज़ाम में काविश करो। नबातात का सब्ज़ा यानी रोईदगी और बालीदगी के मनाजिर से सबक लो। हैवानात की नशवोनुमा और इनके आगे बढ़ने में दिमाग खपाओ। इंसानी गिरोहों की रंगारंगी और तमद्दुनों, अब देखिए कि एक एक जुमले को पढ़ के दिल तो मेरा ये चाह रहा है कि रुकूं, लेकिन फिर वो रफ टूट जाता है। बाद में आप जाकर एक एक जुमले पे गौर किया करें, क्या कुछ कायनात में अल्लाह की निशानियां फैली हुई हैं। और इस पे नज़र डाले बगैर जीना अपने आप को ज़ाया करना है। इंसानी गिरोहों की रंगारंगी और तमद्दनों के मद्दोजर का मुतालिया करो। अपने नफूस और जहान की गहराइयों में झांको। तुम देखोगे कि हर तरफ अटल कवानीन अपना काम कर रहे हैं। हर दायरे वजूद में एक नज्म की कार फरमाई है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वाक़यात तो हवादिस करो किसी गायत की तरफ है, यानी किसी मकसद से। गायत कहते हैं ना, गर्ज़ो गायत क्या है? मुराजे की दुनिया में कोई छोटा वाक़या हो रहा है या बड़ा हो रहा है, यकीनन उसके पीछे कोई गरज है। गुनागु अज़दाद यानी अपोजिट चीज़ें। गुनागु कहते बहुत सारी, यानी बहुत सारी बज़ाहर अपोजिट चीज़ें एक दूसरे से तआवुन कर रही हैं। सच है, सूरज चांद का मिजाज एक है, रात दिन का एक है। फिर आप में कैसे कह सकते हैं कि मैं फलां के साथ काम नहीं कर सकती, मैं उसके साथ तआवुन नहीं कर सकती, मैं उसके साथ नहीं चल सकती? याद रखिए, ये ख़तरनाक बात है। मैं कहूँ मैंने पढ़ाना है, बट क्लास में अगर आप में से फलां 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 बैठे ना, तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी। और अगर फलां फलां नहीं है ना, तो भी नहीं पढ़ाऊँगी। तो ये ख़तरा होता है। एक बात याद रख लें, इंशाल्लाह ज़िंदगी में आपको आगे से आगे ले जाएगी। मैंने जो करना है अपने लिए करना है और अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है। اللہ کے نبی نے کبھی یہ چیز نہ کہی، چونکہ ادھر ابو جہل ہے، چونکہ امیہ بن خلف ہے، چونکہ 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 نہیں، راستے میں روڑے آتے جاتے ہیں، آپ نہ الجھیں، آپ ذرا سا اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں، وہی بندہ آگے بڑھے گا جو لوگوں سے اور حالات سے اوپر اٹھ کر آگے بڑھے گا۔ تو زندگی سے یہ چیز نکال دیجئے، اور یہ دیکھیے کہ تعاون کرنا، کائنات کا رخ، ایک دنیا ایسی جس میں اجداد ہے نا، ہمارا اپنا ہی جسم، دیکھیے آنکھیں کان مختلف کام کر رہے ہیں نا، آنکھیں آنکھیں ہی رہیں گی، آپ 100 سال بھی کوششیں کرتے رہیں ان کو کان بنانے کی، ڈاکٹرز بیوقوفی کے ساتھ ریسرچ کریں، سائنٹسٹ اس پہ محنت کریں کہ آنکھوں سے دیکھنے کی بجائے سننے کا کام لے لیں، بیکار بات ہے، اس سے تو بہت بہتر تھا کہ آپ اپنی آنکھوں کی ویژن کو بڑھائیں، آنکھوں سے کام لیں، اللہ نے جس لیے آنکھیں بنائیں اس کو استعمال کریں، لیکن لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ پورے کارخانہ ہستی میں ایک توافق کار فرمائے، توافق اس کو کہتے ہیں جی، کوارڈینیشن، موافقت، اللہ ہمیں بھی کوارڈینیشن کرنے والا بنا دے۔ کثرت وحدت کے رشتے میں بندی ہے، یعنی اکثریت ایک اللہ کے حکم کی بندی ہوئی ہے وحدت میں، یعنی بہت ہوں، سوچ ایک ہو، یہ مراد ہے۔ 4 لوگ ہیں اور 6 باتیں سوچ رہے ہیں، اور اس میں سے 2 باتیں تو ظاہر کانٹراڈکٹ کریں گی نا، سب کی 4 ایک بھی ہوئی تو۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، ہوں بہت سے پر سوچ ایک ہو، ایسے جڑے ہوئے، منجھے ہوئے، سنبھلے ہوئے لوگ، اور آج ہمیں امت میں ایسی مثالیں بہت تھوڑی ملتی ہیں، اللہ ہمیں ایک کر دے۔ پھر ہر شے میں ارتقا موجود ہے، مطلب ترقی کر رہی ہے ہر چیز کائنات میں، جو بھی ہے ادھر ادھر، آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے بڑھ رہی ہے، ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے، ہر علت کسی اہم نتیجے کو پیدا کر رہی ہے۔ علت کس کو کہتے ہیں؟ بیماری، وجہ، ریزن، یعنی ہر چیز کا کوئی نتیجہ ضرور نکلتا ہے، اور پھر ہر نتیجہ خود آگے کے لیے ایک علت بن رہا ہے جی، یعنی ایک چین سسٹم سے ہم گزر رہے ہیں، بچے سے جوان، جوان سے بڑھاپا، پھر اسی گھر میں ایک اور نسل آ جاتی ہے، پھر وہ اور بڑی ہوتی ہے تو ایک تیسری نسل اسی خاندان میں آتی ہے، ہم سب کتنے مربوط نظام میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ قانون، یہ نظم، یہ توافق، یہ تعاون، یہ وحدت، یہ ارتقاء، آپ سے آپ بطور ایک اتفاقی حادثے کے نمودار نہیں ہوا، اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ نہیں ہے کہ یہ بس ایک چانس ہو رہا ہے، اتفاق ہے، نہیں ہے، یہ چیزیں اپنے آپ کو خود تجویز نہیں کرتی جی، بالکل، سورج اپنے لیے راستے خود نہیں بناتا، چاند نہیں بنا، ورنہ یہ ہو نا تو پھر واقعی گڑبڑے ہوں گی۔ یاد رکھیے گا ایک کام، جب لوگ اپنی مرضیاں کرنے لگتے ہیں نا تو سسٹم بگڑ جاتا ہے، ایک انسٹرکشن کو لے کر جب چلتے ہیں، ایک لیڈرشپ میں چلتے ہیں، ایک رخ پہ سب چلتے ہیں نا، تو پھر آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔ آپ سب کو کہا جائے جو چاہے مرضی کر لیں، چلے جو آپ کہیں وہ، جو کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک سیٹ سسٹم بتانا پڑے گا کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح چیزیں اپنا نقشہ خود نہیں بناتی، بے شعور اور بے جان مادہ اونچے موجودات کی تخلیق آپ سے آپ نہیں کرتا، ذرا سا اس کو سوچے، کائنات کتنے خوبصورت نظام پہ چل رہی ہے، آپ دیکھیے ایک بچے کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک کے سارے مراحل کو ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو یہ جملے بہت آسانی سے سمجھ آئیں گے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ ایک مربوط سلسلے کے ساتھ پیدا کیا، وما خلقت هذا باطلا، یہی پیغام صبح صبح دیا جاتا ہے نا، اٹھو پڑھو، ان فی خلق السماوات والارض، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں، پھر تمہیں پتہ چلے گا اس کائنات کی ایک ایک چیز بول کر بتاتی ہے کہ پیچھے کوئی ہے، کوئی چلا رہا ہے۔ عناصر باہمی مشورے سے توافق نہیں کرتے، عناصر کہتے ایلیمنٹس کو، جیسے آپ دیکھیے کہ کائنات میں بہت سے ایلیمنٹس ہیں، کتنا کچھ ملتا ہے، تو پھر مادہ سارا کا سارا دیکھ لیجئے، لوہا، تانبا، پیتل، پانی، ہوا، گیسیں، آپس میں مشورے نہیں کرتے، بلکہ بالاتر ہستی، فعال و مختار اور حکیم و خبیر ہستی، ایک ناظم، ایک ڈائریکٹر، एक हुक्मरान और एक कानून साज की हैसियत से काम कर रही है। तमाम कुव्वतें और अनासिर इसी की तस्बीह करते हैं, तमाम मौजूदात इसी के हजूर सजदा रेस हैं, तमाम मखलूक इसी के तबई दीन की पाबंद है। अजीम सूरजों से लेकर नन्हे सालिमों, सूरजों को तो पता है ना सूरज सन, बहुत सारे हैं आपको पता है, साल में क्या होते हैं ये छोटे छोटे जो यूनिट हैं एटम और उससे भी छोटी चीज़ें। अजीम सूरजों से लेकर नन्हे सालिमों तक हर शय इसकी बारगाह में मुस्लिम की हैसियत से सर इनकियादे खम किए हुए, मतलब यही है एटम से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज भी उसी के हुक्म पे चल रही हैं। फिर इस्लामी तहरीक ने बताया कि अगर इतने बड़े कारखाने वजूद के ऊपर एक और ज़्यादा मालिक और मुंतजिम होते तो इनके दरमियान टकराव हो जाता, ये यक रंगी और हम आहंगी किसी तरह कायम न रहती जिसका मुशाहिदा तुम कर रहे हो। गोया किताबे कायनात का हर वर्क अल्लाह की हस्ती पर नहीं बल्कि इसकी तौहीद पर और इसकी मुख्तलिफ सिफात पर मुहकम दलाइल से भरा पड़ा है। ये जुमला लिखिए, कुरान ये नहीं बताता कि अल्लाह है, कुरान ये बताता है कि अल्लाह एक है, क्योंकि अल्लाह के वजूद का इनकार तो कोई कर नहीं सकता, ज़रूरत है इस बात की कि उसको एक माना जाए। फिर इस्लामी तहरीक ने दलील के ज़ोर से वाज़ेह किया कि ये कायनात जो पूरी की पूरी अल्लाह के दीन और कानून में जकड़ी हुई है और जिसका हर जर्रा इसके सामने मुस्लिम बनकर हाजिर है, इसमें किसी मखलूक के लिए अल्लाह के सामने बंदगी व इताअत और इस्लाम व इनकियाद का रवैया अख्तियार किए बगैर कोई जगह नहीं। तुम अल्लाह के मुस्लिम बनोगे तो सारी कायनात से हम आहंग हो जाओगे। इसको हाईलाइट करें, हकीकत चाहिए, मुस्लिम बन जाइए, एक रब के आगे झुक जाइए, सारी कायनात आपके जैसी होगी, जो सूरज कर रहा वो आप करेंगे, जो चांद जैसा वैसे आप, आपका इतना बड़ा एक सेटअप बन जाएगा। लफ्ज लिखिए ग्लोबल, इंटरनेशनल, हमारे जहनों में इससे क्या आता है, इस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहकर भी इंसान अपना नाम कायम करे, अगर एक कंपनी है तो पूरी इंटरनेशनल कंपनी है। ये ग्लोबल और इंटरनेशनल जो है ना, इसी को फैलाते जाएं सारी कायनात, सूरज चांद सितारे आपको अपने भाई बहन लगेंगे, मामू चचा फूफो लगेंगे, ये सितारा ये मेरा भाई है, ये बिल्ली मेरी बहन है। आपको शायद ये मेरी बातें अजीब लगें, लेकिन जो वो करें आप करते जाइए, आपकी फैमिली बढ़ती होती जाएगी। हम इतने छोटे नटशेल में जिंदगियां गुजार देते हैं ना, मुझे तो लगता है कि जब हमें आगे जाकर पता चलेगा ना कि हम क्या कर सकते थे और क्या किया, यानी इतना कर सकते थे इतना किया, इस पे भी हैरत होगी। हदीस में आता है कि जन्नतियों को भी जन्नत में जाकर उन लम्हों पे अफसोस होगा, हसरत होगी जो अल्लाह के याद के बगैर गुजारे होंगे। हालांकि आप देखिए जन्नत ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून की जगह, कोई गम दुख नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ जाकर ये फीलिंग्स आएंगी, हो सकता है वक्ती हों बाद में निकल जाएं, सिर्फ एक अल्लाह दिखाना चाहे कि देख लो कुछ और करते तो क्या होता। और ये चीज़ वाकई आपको फिर आगे बढ़ाती है। फिर इस्लामी तहरीक ने दलील के ज़ोर से वाज़ेह किया कि ये कायनात जो पूरी की पूरी अल्लाह के दीन और कानून में जकड़ी हुई है और जिसका हर जर्रा इसके सामने मुस्लिम बनकर हाजिर है, इसमें किसी मखलूक के लिए अल्लाह के सामने बंदगी व इताअत और इस्लामी इनकियाद का रवैया अख्तियार किए बगैर कोई जगह नहीं। तुम अल्लाह के मुस्लिम बनोगे तो सारी कायनात से हम आहंग हो जाओगे और तुम्हारा निज़ाम तमद्दुन वैसे ही अमन और तवाफुक का मज़हर बन जाएगा जैसे मादे की नगरी में कार फरमाए। वही आसान मतलब यही है इसका कि तुम भी कायनात के साथ मिल जाओ तो सब कुछ चीज़ों में खुद ही कोऑर्डिनेशन आ जाएंगी, और अगर तुम अल्लाह से बगावत और कुफर करोगे तो निज़ाम कायनात से तुम्हारा निज़ाम तमद्दुन बेरब्त हो जाएगा और इसमें तवाज़ुन और तवाफुक नहीं रहेगा जो ज़मीन व आसमान में कार फरमा है और जिसकी वजह से मौजूदात सलामती से बहरामंद होकर इर्तका कर रहे हैं। इस कायनात में इंसान के लिए भी फलाह की वाहिद राह यही है कि वह अल्लाह के दीन और अल्लाह के कानून का पाबंद होकर रहे। तुम जो अल्लाह के पैदा करने से पैदा होते हो, इसके रिज़्क़ पर पलते हो, और हाँ तुम के जिनके बदन का उज़ उज़ और जिनके अज़ा का ज़र्रा ज़र्रा मुस्लिम बनकर खुदाई कानून में जकड़ा हुआ है। तुम्हारे लिए ज़िंदगी की कोई सीधी राह है तो अल्लाह की बंदगी ही की राह है। तुम्हारी फितरत का खमीर इसी बंदगी के अहद से उठाया गया और तुम्हारे ज़मीरों में एहसास अबूदियत पेवस्त है। फिर इस्लामी तहरीक ने इसी ज़ोर इस्तदलाल से ये हकीकत भी उजागर की कि अल्लाह की तरफ से हिदायत की इख्तियार हर हर जर्रे को, इसको नोट करें, हम सब को गाइडलाइन चाहिए होती है। वही अनासिर की तकदीरें मुकर्रर करने वाला है, वही ड्रामे फलकी के मदार और इनकी रफ्तारें तय करता है, वही अशिया को मुख्तलिफ ख्वास देता है, वही हर हर कुव्वत को इसके ख़ास फ़राइज़ में लगाता है, और वही हर मखलूक के लिए राह अमल मुआयन करता है। दूसरे मौजूदात की तरह इंसान भी इसी की हिदायत का इस तरह मुहताज है जैसे वो रोशनी, हवा और पानी का मुहताज है। अल्लाह ने अपनी हिदायत से मखलूक को बहरामंद करने के लिए वही का निज़ाम मुकर्रर किया। बेजान अनासिर के लिए तबई जबरियत व नबातात के लिए कुव्वत नमू, हैवानात के लिए जबिलत वही का ज़रिया है, लेकिन इंसान चूँकि शऊर से बहरामंद है इसलिए इसके लिए वही की वो तकमीली सूरत मुकर्रर की गई है जिसके तहत इसके शऊर को मुखातिब किया जाता है। फिर इस्लामी तहरीक ने अपनी असूली दावत के इस जुज़ को भी दलील ही के ज़ोर से काबिले कबूल बनाया कि जब इस कायनात में इल्लत व मालूल, इल्लत क्या है, इल्लत बीमारी, तो मालूल उसका अपोजिट यानी जिस पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, और सबब व नतीजे का कानून काम कर रहा है, तो इंसान के अखलाकी अमाल को भी इस जामे कानून के तहत किसी तकमीली नतीजे पर पहुंचना चाहिए। इसने कानूने मकाफात को तारीख में दिखाकर साबित किया कि इस कानून के अहाते में इंसान की तमद्दुनी सरगर्मियों को भी आना चाहिए। इसके साथ साथ इसने ये भी दिखाया कि इंसान की इस महदूद इम्तिहानी ज़िंदगी में महदूद कानूने मकाफात के तहत पूरे के पूरे नतायज अमाल सामने नहीं आते। जी इस दुनिया में पूरी वेजिस नहीं मिलती आगे के लिए अल्लाह ने रखी हुई है, बल्कि बसा औकात एक सिलसिला अमाल ही की तकमील नहीं हो पाती। नीस इससे भी बढ़कर बहुत सी सूरतों में बिल्कुल उल्टे नतायज से आदमी को दो चार होना पड़ता है। लिहाजा इस खुदाई निज़ाम से तवक्को करनी चाहिए कि अर्जी ज़मीन के बाद किसी नए दौरे हयात में इंसानी अमाल के नतायज को भरपूर तरीके से ज़हूर करना है। अल्लाह का अदल जो हर तरफ कार फरमाए, इसका अमली तकाजा ये है कि जो जैसा करे वैसा भरे। इसी तरह इसने हयात बादल मौत और मुहासबे आखरत और जजा सज़ा का तसव्वुर दिया। फिर इन सारी बुनियादी सच्चाइयों को साबित करने के लिए इसने पिछली पूरी इंसानी तारीख पेश कर दी, एक एक कौम की दास्तान को लिया और दिखाया कि जिन इंसानी गिरोहों ने ज़िंदगी का निज़ाम इन हकायक पर उठाया उन्होंने फलाह पाई, और जिन्होंने इनसे रूगर्दानी की वो ख्वार और रुसवा होकर मिलिया मेट हो गईं। जिन अफराद ने इनको कबूल किया इनके दिलो दिमाग रोशन हो गए। फिर सोचें इस जुमले को, जिन अफराद ने इनको कबूल किया इनके दिलो दिमाग रोशन हो गए और इनके किरदार जगमगा उठे, और जिन्होंने इनकी मुखालफत की वो पस्तियों में गिरते चले गए। दिखाया कि ये वो सच्चाइयां हैं जिनकी दावत हर दौरे तारीख में हर कौम के सामने एक ही तर्ज के लोगों ने बार बार पेश की, और इनको गालिब करने के लिए बेलौस जज्बे इखलास के साथ जानो माल की सारी मता निछावर कर दिखाई। इस्लामी तहरीक की यह असासी दावत अपने पूरे इस्तदलालात के साथ कुरान में फैली हुई है। इसे बड़े हुस्ने तकरार से पेश किया गया, इसे दिलरुबा तशरीफ आयात के साथ लाया गया, इसके लिए बेहतरीन अदबी जुबान इस्तेमाल की गई, इसमें जज्बात लतीफ़ का रस घोल दिया गया, मुखालिफाना एतराजात को साथ के साथ साफ किया गया, मुनकर और हरीफों की नुक्ता आफरीनियों और तंज इस्तेहज़ा का संजीदगी से तजिया किया गया। फिर कहीं इबरत दिलाई गई, कहीं तंबीह की, कहीं शर्म दिलाई, कहीं चैलेंज किया, कहीं नरमी और लताफत से दिलों को पिघलाया, कहीं सवालिया अंदाज इख्तियार किया, कहीं इस्तेजाब का रंग भुरा यानी उजब से। गरज के मुख्तलिफ असालीब से इंसानी जहन को इस तरह घेरा कि अरबाबे शऊर के लिए कोई राहे फरार खुली न रहने दी। अगर बाजी तलवार के जोर से फतह की जाने वाली होती तो आखिर इस्तदलाल के इतने अहतमाम की ज़रूरत ही क्या थी, जो कुरान के दो तिहाई बल्कि जायद हिस्से में फैला हुआ है। दर हकीकत इस्लामी तहरीक की बेपनाह कुव्वत इस्तदलाल ने अपने मुखातिबों को बेदम कर दिया और इनमें सहले सादत ने कबूल हक के लिए दिलों के दरवाजे खोल दिए और अहले जैख मजबूर हुए। अहले जैख कौन होते हैं? टेढ़े दिल वाले, टेढ़ापन। मजबूर हुए कि दलील की बाजी ख़त्म करके तशद्दुद के ओछे हथियारों पर उतर आए। जो भी दावत व तहरीक अपने मुखातिबों को इस मरहले पर पहुंचा देती है वह आखिरकार मैदान मार ले जाती है। क्या पता चला इस सारी बात से? यहाँ ये पता चलता है कि दलील सबसे बड़ी कुव्वत है और दलील में सबसे बड़ी दलील ला इलाहा इल्लल्लाह। आप दलील के मैदान में नहीं हार सकते अगर आप हक का साथ देते हैं। अगर आप हक पर हैं ना, लोग आपके साथ कुछ भी कर लें लेकिन वो आपको दलील के मैदान में नहीं हरा सकते। तो अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि हमारे दिल दिमाग मुसख़र हो जाए, हम हकीकत में इस दीन को लेकर और इस किताब को लेकर ऐसे उठे कि ज़िंदगी बदल जाए। आज के लिए इतना काफ़ी है। कभी भी गिव अप ना करें, अपनी ज़िंदगी को हमेशा किसी पॉजिटिव लाइन पर लेकर जाएं और हमेशा ये भी दुआ करें कि अल्लाह मुझसे बेहतरीन खैर ले, मुझसे बेहतरीन काम ले, मुझे ज़ाया होने से बचा। मैं अपने आप को बेकार मशगलों में और बेकार चीज़ों में न लगा दूं और ये भी दुआ किया करें कि मालिक मेरे लिए इस दीन पे चलना और अमल करना आसान कर दे और हर माहौल हर रास्ते पे चलती ही जाऊं, चलती ही जाऊं। और फिर साथ ही साथ अल्लाह से ये भी कहा करे कि अल्लाह ये ज़िंदगी ये दुनिया तो गुज़र ही जाएगी, 4 दिन की कहानी है सारी, फिर इसके बाद क्या होगा ये हम सब अपने ऊपर लेकर सोचें। देखिए ना ख़त्म होने वाली आखरत और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी हमारा रास्ता देख रही है। अल्लाह ताला हमें उसका खूगर कर दे, हमें अभी से ये गम और फिक्र लग जाए कि हम अल्लाह के सामने जब खड़े हों तो सुरखरू हों। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।